प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 24 अप्रैल 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन पांच नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं निखिल पाठक भोपाल मध्य प्रदेश से, हिमांशु पांडे आप भी भोपाल मध्य प्रदेश से ही हैं, आकाश कुमार विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से, बिट्टू गौतम नागला ब्रह्मन जिला हाथरस उत्तर प्रदेश से और हर्ष अग्रवाल हसनपुर अमरोहा उत्तर प्रदेश से। तो निखिल, हिमांशु, आकाश, बिट्टू और हर्ष आप पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग थोड़ा महाभियोग पर बात करेंगे, इम्पीचमेंट पर, लेकिन इससे पहले आइए थोड़ी सी दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण जो खबर है तो न्यूज में आपने सुनी होगी और मैं इसको महत्वपूर्ण खबर मान रहा हूं, महत्वपूर्ण खबर बट नेचुरल है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सामान्य रूप में नहीं। और यह जो महत्वपूर्ण खबर है आपने न्यूज में पहली न्यूज आपने सुनी, जो पहली न्यूज थी, आप देखिए कि महाभियोग की खबर, इसको इस तरीके से इसका मूल्यांकन कीजिए कि महाभियोग को आपको मालूम है कि राज्यसभा के सभापति जी ने रिजेक्ट कर दिया है, ना, याचिका उनकी स्वीकार नहीं की गई, आप यू कह लीजिए। वो सेकेंड खबर थी और उससे पहले जो खबर आपने सुनी वो थी कि प्रधानमंत्री द्वारा जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है, ये महत्वपूर्ण खबर थी नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अभी आप कह लीजिए कि सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अलग चीजों को देखते हैं और नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को अलग रूप में देखते हैं, तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, या कह लीजिए कि योजना, योजना शब्द भी आपको पढ़ने को और सुनने को मिलेगा। ये केंद्र सरकार ने शुरू किया है और बेसिकली ये कुछ महीनों तक चलेगा, ये साल भर की योजना नहीं है। और इस अभियान में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें की जाएंगी, अभी और भी बातें डिटेल में होंगी, उस पर कभी वक्त मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी जो जानकारी मुझे मिल पाई है वो इस दौरान लगभग 21,000 गांव के लिए विशेष पहल शुरू की गई है, लगभग 21,000। वो विशेष पहले क्या होंगी, उसमें यह है कि जो गांव के हमारे जो गरीब लोग हैं उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की जो दूसरी योजनाएं हैं जो खासकर गांव के विकास से जुड़ी हुई हैं, कोशिश की जाएगी कि उनका 100% इम्प्लीमेंटेशन इन गांव में हो जाए, जैसे उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष, सौभाग्य योजना, उजाला, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये जितनी भी योजनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम आप कह सकते हैं जो ग्रामीण विकास के लिए हैं, ग्रामीण व्यवस्थाओं के लिए हैं, वो 100% वहां लागू हो जाए। देखिए इससे होगा क्या कि अगर देश के कुछ गांव में इस तरह की व्यवस्था हो गई तो डेफिनेटली यह दूसरे आसपास के लोगों के लिए मॉडल का काम करेगी और इससे आप विजुलाइज भी कर सकेंगे कि सच में अगर इन योजनाओं को अच्छे तरीके से लागू कर दिया गया तो गांव के जीवन में कितना बड़ा उछाल आ सकता है, उत्साह आ सकता है और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा कि वहां से जो माइग्रेशन है वो रुकेगा। और इस माइग्रेशन को सच पूछे तो भारतीय संदर्भ में रोका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नगरों की जो समस्याएं हैं वो आप अलग से जानते ही हैं, राइट। तो मित्रों इस योजना के बारे में आपको जब भी कुछ पढ़ने को जानने को मिले आपको जानना चाहिए और मैं चाहूंगा कि खासकर हमारी जो पंचायती व्यवस्था है, इस पंचायती व्यवस्था के लिए आप बकायदे 2-3 पेज अपनी डायरी के सुरक्षित रख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिविल सर्विसेज के लिए है। और आप फिर आपने न्यूज में सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी सीधे ग्राम पंचायतों से बात भी करेंगे। इसके बाद मित्रों एक जो दूसरी खबर है वो है सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को लेकर। मेघालय में उठा लिया गया है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर के वहां से भी उस कानून को समाप्त कर दिया गया है। इस पर हम लोग आगे कभी बात करेंगे, इस पर भी शायद अब कुछ आर्टिकल्स वगैरह आए, और पंचायत पर तो डेफिनेटली ग्राम स्वराज अभियान पर तो आर्टिकल्स आएंगे ही आएंगे। मित्रों, अब मैं सीधे सीधे महाभियोग पर आना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कल भी मैंने आपसे कहा था कि इसके बारे में आपकी जो समझ है, मैं समझ की बात कर रहा हूं, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कल के डीडी न्यूज में आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस पर बातें की गई हैं और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बातें की गई हैं और बहुत ही लंबी बातचीत की गई है। बातचीत करने वाले जितनी भी पर्सनालिटीज थी, मैं डीडी न्यूज की बात कर रहा हूं, वो सब के सब पर्सनालिटी एक तरीके से लॉ के एक्सपर्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट थे। आपको सिविल सर्विस की दृष्टि से एक बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरह के डिस्कशन सुनते हैं, है ना, तो आप देखिए कि जो व्यक्ति बोल रहा है, जो कह रहा है, जो अपने मत रख रहा है, मत का प्रतिपादन कर रहा है, वो व्यक्ति कौन है। कौन का मतलब है कि डेफिनेटली कुछ तो तटस्थ लोग होंगे। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार व्यक्ति हैं, जैसे सोली सोराब जी आए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट है, तो वो अपनी बात को बहुत ही तटस्थ होकर के रखेंगे। सुभाष कश्यप जी आए, जिनकी किताब हमारा संसद बहुत ही फेमस किताब है, और लोकसभा सचिवालय के वो महासचिव रहे हैं, और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है जब शंकर दयाल शर्मा जी उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के अब सभापति भी होते हैं, तो उस दौरान वो आए। तो अब देखिए कि अब वो लोकसभा के महासचिव रहे हैं, तो अब उनका अब किसी पार्टी विशेष से कुछ लेना देना नहीं है। सोली सोराब जी अगर आएंगे तो उनका भी पार्टी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग इनफैक्ट सही तरीके से अपनी बात को रखेंगे, तार्किक रूप से रखेंगे, ये एक पक्ष है, एकेडमिक है, कुछ सीमा तक जर्नलिस्ट को भी कह सकते हैं, बाहर के जो लोग हैं आते हैं उन्हें भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जर्नलिस्ट या और दूसरे लोग हैं उनका हो सकता है कि एक राजनीतिक दर्शन के प्रति झुकाव हो, लेकिन फिर भी वो अपनी बात कोशिश करते हैं कि अपनी बात में वो तर्क लाएं और उसे सिद्ध करें, या ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये किसी पार्टी को फेवर कर रहे हैं। अगर राजनीतिक व्यक्ति है, सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो देखिए आप उनकी बातों को सुनिए, ऐसा नहीं है कि वो अर्थहीन बात कर रहे हैं, नॉट एट ऑल, वो भी जो बात रख रहे हैं उनमें दम है, वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आप उनको भी ध्यान से सुनिए और उसकी फिर एनालिसिस कीजिए, प्रभावित मत होइए। यानी कि देखिए अब आपको दो तरह के तथ्य मिलेंगे, एक तरफ आपको सीधे सीधे तथ्य मिल रहे हैं क्या प्रोविजंस है, दूसरी तरफ आपको तथ्यों के इंटरप्रिटेशन मिल रहे हैं, उसकी व्याख्या मिल रही है। तो व्याख्या करने वाले लोग कौन हैं, वो राजनीतिक पार्टियां, वो अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर रही हैं और ये उनका अधिकार है, करना भी चाहिए, और यही ज्ञान का क्षेत्र भी है कि उसकी कितनी व्याख्याएं हो सकती हैं। तो आप उनको ध्यान से सुनिए लेकिन प्रभावित मत होइए, पॉइंट्स नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई बहुत ही अपीलिंग पॉइंट्स लगते हैं तो आप डेफिनेटली उनको नोट कीजिए। नोट करने के बाद उन पर थोड़ा सा विचार कीजिए, देखिए कि कहां एक दूसरे को काट रहे हैं। जब आपके पास पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो आप पाएंगे कि अच्छा इन्होंने ये कहा, देखिए उन्होंने इस पॉइंट को कितने खूबसूरत तरीके से काट दिया, निरस्त कर दिया, या उन्होंने ये पॉइंट कहा, तो देखिए ये पॉइंट तो बना हुआ है, इसे कोई नहीं काट सका। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा उसमें वक्त लगाइए और फिर आप अपना मत उसमें निर्धारित कीजिए कि आप अब क्या सोच रहे हैं। तो मित्रों, ये जो इस तरह के डिस्कशंस होते हैं आपको इसी एंगल से देखना चाहिए। होता यह है कि जब आप वाकई में अब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है अखबारों में देखिए आज आपको इसके बारे में बहुत पढ़ने को मिलेगा आज के अखबारों में, तो मैं उन चीजों पर नहीं जा रहा हूं, है ना, कि किन किन पॉइंट्स के आधार पर राज्यसभा के सभापति ने इसे अस्वीकार किया है, जो नोटिस दिया गया उस नोटिस को अस्वीकार किया है, वो अखबारों में है, आप पढ़ लीजिएगा, दोहराने का कोई मतलब नहीं है। मैं यहां एक दो चीजें आपको बताना चाहूंगा, स्पेशली अखबारों ने उसका पालन नहीं किया है मैंने देखा है, लेकिन चलिए अब अखबारों के लिए पालन करना जरूरी भी नहीं है लेकिन आपके लिए जरूरी है। वो क्या है, जैसे कि जो नोटिस अस्वीकार किया गया है, उस नोटिस को अस्वीकार करने वाला कौन है, याद रखिए कि उस नोटिस को अस्वीकार करने वाले वेंकैया नायडू जी नहीं है, कुछ अखबारों ने लिखा है नायडू जी ने अस्वीकार किया, ठीक है, वो देखिए समाचार पत्र की भाषा के तहत वो ठीक कर रहे हैं, मतलब ठीक नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम गलत तो नहीं है। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बहुत ही परफेक्ट आंसर होना चाहिए। इसे उपराष्ट्रपति ने भी अस्वीकार नहीं किया है, याद रखिए। वैसे उपराष्ट्रपति ने भी, नायडू जी ने अस्वीकार किया है, यह भी सही है, खारिज किया है कह लीजिए, और उपराष्ट्रपति जी ने भी किया है, दोनों सही है। लेकिन जो सही है, एग्जैक्ट है, वो है राज्यसभा के सभापति ने नोटिस को खारिज कर दिया। राज्यसभा के सभापति, क्योंकि इसी हैसियत से, उनके इसी हैसियत के आधार पर जो जिन पार्टियों ने महाभियोग लगाया है उनके पास याचिका भेजी थी, नोटिस भेजा था, राइट। तो यहां इन चीजों के बारे में सतर्क होना चाहिए। फिर जो दूसरी चीज है, क्योंकि अखबारों में ये चीज आपको पढ़ने को मिलेगी और न्यूज में भी काफी कुछ दिखाया जा रहा था कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग की बात कही गई है, तो ये अनुच्छेद आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, यूं कह लीजिए कि रट लेना चाहिए। और ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि तो ऐसे कुछ हिस्सों को ना हम एक अलग पेज पर नोट करते चले जाते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और बीच बीच में उनको दोहराते जाते हैं, तो इससे क्या है कि हमारे दिमाग में ताजे बने रहते हैं। तो आपने अखबारों में पढ़ा, न्यूज में भी, डिस्कशन में भी सुना, अनुच्छेद 124 ब्रैकेट में है 4। याद रखिए कि अनुच्छेद केवल 124 नहीं है, जो अनुच्छेद 124 है उसका शीर्षक है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसी का जो चौथा पॉइंट है वो महाभियोग से संबंधित है, राइट। मित्रों, मैं चाहूंगा कि मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है, मैं आप उसके शब्द आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़कर सुनाऊं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारा का सारा जो मामला है वो इंटरप्रिटेशन का मामला है, राइट। और जहां भी कानूनी चीजें होंगी वो इंटरप्रिटेशन की मांग करती है। यानी कि अब आपके प्रिपरेशन की जो नेक्स्ट स्टेज है वो ये है कि आप ओरिजिनल चीजों पर जाकर के देखिए, ओरिजिनल देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए कि वहां क्या कहा गया है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए यहां पढ़कर सुना दे रहा हूं, आप इसे सुन लें। 124, आर्टिकल 124 इन ब्रैकेट 4, हिंदी में पहले मैं पढ़ रहा हूं, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार सिद्ध, यानी कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। इसमें ढेर सारी चीजें शामिल है मित्रों, एक चीज शामिल नहीं है, ढेर सारी पॉइंट्स है। और सच पूछिए, अगर आर्टिकल 124 को लेकर के प्री में कोई प्रश्न पूछा गया तो इसी के इंटरप्रिटेशन के आधार पर पूछा जाएगा। इसमें बहुत सारे इस तरह के ट्विस्ट्स हैं। मैं इंग्लिश स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा पढ़ करके सुना देता हूं, वैसे भी जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ा सा कठिन और बड़ा लंबा है, तो हो सकता है कि हिंदी मीडियम के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही हो। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अभी के संदर्भ में। ये जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट supported by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting, has been presented to the president in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapability. Ye original words hai. अब आप इन ओरिजिनल वर्ड्स को तोड़िए, देखिए कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं, और फिर आप सोचिए, विचार कीजिए और तैयारी कीजिए, दीजिए कुछ घंटे लगाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 घंटे आपके लग रहे हैं लगाइए, 3 घंटे लग रहे हैं लगाइए, एकदम इसको पी जाइए, जैसे आप शरबत पी जाते हैं, आज की भाषा में बात करूं तो कोक पी जाते हैं आप, उसी तरह से इन सब कुछ चीजों को होता है जो हमें पीना पड़ता है, ये अमृत रस जैसे है सिविल सर्विस की दृष्टि से, कुछ इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो इस पर थोड़ी सी मेहनत कीजिए, इसके साथ इसी तरह का व्यवहार कीजिए, राइट फ्रेंड्स। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आज भी संख्या क्लिपिंग्स की काफी हैं, आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा मित्रों। अब मैं आता हूं ईमेल पर। सबसे पहले मित्रों, आप सबकी ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से, मैं बधाई देना चाहूंगा प्रियंका दुबे को जो इलाहाबाद से हैं। उन्होंने मेल से सूचित किया है कि यूपी के पीएससी में उनका जो सिलेक्शन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए हो गया है। प्रियंका, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई और भविष्य के और भी बेहतर सफलताओं के लिए शुभकामनाएं। तो से सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: सुनीता स्वराज, प्रियंवदा राज वर्मा, प्रांशु राठौर इंदौर मध्य प्रदेश से, रूपल गौतम कोटा राजस्थान से और मुकेश कुमार झा मधुबनी बिहार से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।